हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं धराति स्वपरान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत कदाचार शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवां अध्याय जिसका शीर्षक है श्री नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश। आज हम श्लोक नंबर 23 पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक परम भक्त की जीवन गाथा। मतलब आज श्री नारद मुनि अपने विषय में बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई और मैं देवर्षि बन गया। नारद मुनि आज अपने विषय में बता रहे हैं, वे कह रहे हैं अहम् पुरातीत भवे भवम् मुने दास्यास्तु कस्याश्चन भेदवादिना निरूपितो वा ലഖീവ യോഗിന ശുശ്രൂഷ നേത്ര ദൃശിനേ വിവിക്ഷത അഹം പുരാതീത ഭവീഭവം മുനി ദാസ്യാസ്തു കശ്ചന വേദവാദിന നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിന ശുശ്രൂഷണേ പ്രാ വൃഷിനേ വിവിക്ഷത അഹം പുരാതീത ഭവീഭവം മുനി ദാസ്യാസ്തു കശ്ചന വേദവാദിന നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിന ശുശ്രൂഷണേ പ്രാ വൃഷിനേ വിവിക്ഷത അഹം പുരാതീത ഭവീഭവം മുനി ദാസ്യാസ്തു കശ്ചന വേദവാദിന നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിന ശുശ്രൂഷണേ പ്രാ വൃഷിനേ വിവിക്ഷത അഹം പുരാതീത ഭവീഭവം മുനി ദാസ്യാസ്തു കശ്ചന വേദവാദിന നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിന ശുശ്രൂഷണേ പ്രാ വൃഷിനേ വിവിക്ഷത അഹം പുരാതീത ഭവീഭവം മുനി ദാസ്യാസ്തു കശ്ചന വേദവാദിന നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിന ശുശ്രൂഷണേ പ്രാ വൃഷിനേ വിവിക്ഷത അഹം പുരാതീത ഭവീഭവം മുനി ദാസ്യാസ്തു കശ്ചന വേദവാദിന നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിന ശുശ്രൂഷണേ പ്രാ വൃഷിനേ വിവിക്ഷത ശബ്ദം കാത് അഹം പുരാതീത ഭവീഭവം മുനി അഹം अर्थात मैं नारद मुनि कह रहे हैं कि मैं पूरा पुरासीन काल में यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है नारद की गाथा कि मैं पूर्व कल्प में यहाँ से जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि ये जो जीव है वो पुरातीन है वो पुराचीन है कभी समाप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं न तो वाहम ज्ञातनासम न तम ने जनादिता न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। कभी ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे मैं नहीं था यह संपूर्ण सृष्टि नहीं थी ये संपूर्ण राजा नहीं थे और न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हम नहीं होंगे। तो यहाँ नारद मुनि बता रहे अहम पुरातीत मैं भी प्राचीन काल में पहले अतीत भवे अर्थात पूर्व कल्प में कल्प ये वाला कल्प भी नहीं पहले कल्प जैसे हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु होती है एक कल्प तो उसके इस कल्प की बात नहीं हो रही है पहले कल्प में जब नारद मुनि भगवान के नारद मुनि बता रहे हैं अहम पुरातीत भवे भवम मुनि अभवम का मतलब होता है हो गया मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि हे मुनि व्यासदेव पहले पहला जो कल्प था उस समय क्या था दास्यास्तु दास्यास्तु का मतलब होता है दासी का पुत्र था। तू मना लेकिन लेकिन कस्यास्तन वेदवादिनाम, कस्यास्तन मतलब किसी वेदवादिनाम वेदांत अनुयायियों का, वेदवादी नाम का मतलब होता है वेदांत अनुयायियों का, निरूपित यानी लगा हुआ बालक अथवा छोटा नौकर एवं केवल योगी नाम अर्थात भक्तों की, भक्तों की शुश्रूषण अर्थात सेवा में प्रावृषि, प्रावृषि वर्षा कहते, वृषि कहते हैं वर्षा को, और वर्षा ऋतु के जो चार मास होते हैं उसको बोलते हैं प्रावृषि, निर्विवेक्षताम यानी कि साथ रहते हुए। अनुवाद, हे मुनि पिछले कल्प में मैं उस दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी पहल अर्थात अव्यक्तिगत सेवा किया करता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से शक्ति सिक्त वातावरण की विचित्रता का संक्षिप्त वर्णन किया है कि जो भक्तिमय वातावरण होता है ना, अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जीवन, उसका जीवन किस प्रकार से पलट जाता है, सिर्फ वाइब्रेशन उन भक्तों का संग जब उसे मिल जाता है तो किस प्रकार से जीव का कल्याण होता है, उसका यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन किया है कि वे एक अत्यंत ही क्षुद्र माता पिता की संतान थे, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी तो भी वे भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहने के कारण अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति की शक्ति। सारी जीव आत्माएं भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की उस स्थिति को माया कहते हैं। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। नारद के पुनर्जन्म की निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है, भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले किसी प्रामाणिक भगवान के सेवक को चुने और उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु वह पारदर्शी माध्यम है जिससे होकर उस भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पद है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी व्यास सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उसके मार्गदर्शन में भगवान के दास की दिव्य कृपा से सारी जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम्। पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 23। आज क्योंकि श्लोक नंबर 22 में नारद मुनि ने वेद व्यास जी को कहा, एरम हि पुंसस् तपसः श्रुतस्य वा, कि जो भी हम तपस्या करते हैं, कोई व्यक्ति यदि तपस्या करता है, वेद अध्ययन कर रहा है, श्रुतस्य वा और सुनता है, यज्ञ करता है और विष्टस्य सूक्तस्य च बुधिद्धतयो, और जो भी उसने दान किया है, स्तुति जप जो भी किया है, उसका प्रयोजन क्या है, अविच्युतोर्थ कवि भी निरूपते, जो भी विद्वान है, जो विद्वान मंडली है, जो कवि है, उन्होंने क्या बताया है कि उस सब का वास्तविक प्रयोजन क्या है, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, कि उसका वास्तविक फल क्या है कि भगवान की दिव्य लीलाओं में जाकर समाप्त, कि भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान के विषय में जानना, भगवान से प्रेम करना, यही समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य है। चाहे जितना भी वेद अध्ययन किया जाता है, जितनी भी तपस्या की जाती है, जो भी कुछ किया जा रहा है आध्यात्मिक में, तो उसका मीटर क्या, कुछ तो मीटर निकलना चाहिए ना, आपको पता चलना चाहिए कि क्या फायदा हो रहा है। तो फायदा किससे पता चलेगा, कि आपका कृष्ण प्रेम इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब अगर हम ऐसे अंदाजा लगाना चाहे कि मेरा जब सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो वैसे तो क्या है, धीरे धीरे हृदय के अंदर जो मलिनता है, जो अनर्थ है, वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। लेकिन अभी इंस्टेंट अगर आपको पता चलता है, तो उसमें ऐसे पता चलेगा कि क्या आज कृष्ण प्रेम में इंक्रीमेंट हुआ है, क्या मेरा दर्शन करने का और मन कर रहा है, क्या मेरा और जप करने का मन कर रहा है, क्या मेरा संकीर्तन करने का अधिक मन कर रहा है। तो जिस तरह से आपका कृष्ण प्रेम में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी साधना सही हो रही। अगर हम जब हमारा क्या होता है कि जब हमें पता है 16 माला करनी है, तो 16 माला खत्म करते हैं कि किसी तरह से ये जो बोझ है वो खत्म हो जाए। और अगर कोई कभी ऐसे कहे कि आज 17 माला करो, तो ऐसा लगता है कि बस 16 हो गई ना, अभी टांगो माला को, अभी दूसरा काम है बहुत सारा। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविक भक्ति का अगर प्रगति हो रही है, तो उसका मतलब है कि मुझे और भी करने की इच्छा हो रही है। तो ये कैसे संभव है, रूखी जो अगर हम साधना करते हैं ना, उससे ही संभव नहीं है। आज नारद मुनि बता रहे हैं कि वो संभव है केवल और केवल शुद्ध भक्तों के संग से। यदि शुद्ध भक्तों का संग होता है ना, तो हमारी साधना, हमारा कृष्ण प्रेम किस प्रकार से इंक्रीज होता है, हमको खुद भी पता नहीं चलता। हर क्षण में प्रतिक्षण वर्धमान होता है भक्तों के संग से कृष्ण प्रेम। तो नारद मुनि, जैसे हमारे साथ क्या होता है, जो हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर इंसिडेंट होता है, जो एक मेमोरेबल, बहुत ज्यादा जिसको हम याद रखते हैं, बहुत अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन की, उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो वास्तविक में दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे सुंदर पल वो होता है जब किसी शुद्ध भक्त से हमारी भेंट होती है। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आप सीखते हो, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, वो इस जीवन में यदि भौतिक प्राप्त हो रहा है, तो वो क्षय हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। और वास्तव में वो तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि वो तो दुख के बराबर है, जो भौतिक संतुष्टि या भौतिक सुख या भौतिक व्यक्ति या वस्तुएं जो भी हमें प्राप्त हो रही हैं, वो किसी न किसी कारण हमारे दुख का कारण बनती है। परंतु जब हम किसी शुद्ध वैष्णव से हमारी भेंट होती है, जब किसी भक्त से हमारी भेंट होती है, तो हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर पल वही होता है। तो हमें उसे याद रखना चाहिए कि ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। तो नारद मुनि आज वही बता रहे हैं कि ये अहम पुराती तभवे भवम मुने, हे मुनि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं पुराने कल्प में जब दासस्तु कस्याश्चन वेदवादिना, कि मैं दासी का पुत्र था लेकिन किसी प्रकार से जो वेदांत मुनि थे, वेदवादिना मतलब वो वेद के अनुयायी जिन्होंने भक्ति को वेदांत, भक्ति वेदांत है ना, कि वेद का अंत क्या है कि जो वेद को सही तरह से समझता है ना, भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि संविनिष्ठो मत्तः स्मृति ज्ञानमुपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। जो वास्तव में वेद को समझता है वो ये जान लेता है कि वेदों का जानने वाला, वेदों का रचयिता और वेदों का लक्ष्य केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो जो ये बात को समझ लेता है उसको बोलते हैं वेदवादी नाम। जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वास्तव में भक्ति वेदांत हम बोलते हैं श्री प्रभुपाद जी को, यानी कि वो बताते हैं कि वेदों का अंत कहाँ पर आके होता है, भक्ति। भक्ति में जो ये वास्तव में ये बात बता सकते हैं ना, वही उन्होंने ही वेदों को सही तरह से समझा है। तो ये बता रहे हैं कि वेदवादी नाम कुछ भक्त भगवान के योगी वो आए थे। योग का मतलब होता है जुड़ना, जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। निरूपित बालक एव योगिना, तो मेरी माता उनकी सेवा करती थी और शुश्रूषण प्रावृषि निर्विवक्षता, कि जब चतुर्मास होता है ना, चतुर्मास में क्या होता है, वर्षाधिक होती है, तो जितने भी ब्राह्मण और ये वेदांती और योगीजन होते हैं, जो संत होते हैं, वो फिर जैसे वैसे तो प्रचार के लिए इधर उधर जाते रहते हैं ना, प्रवीण जी का आचार्य होते हैं, हर जगह पे जाते रहते हैं, लेकिन जब चतुर्मास आता है तो कहीं न कहीं टिकते हैं कि वो चार महीने सारे जितने भी संत होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, एक जगह पर स्टे करते हैं और वहां पर भगवत कथा चल रही होती है और अत्यंत ही सुंदर वातावरण होता है। तो ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जब ये ब्राह्मण लोग हमारे आश्रम में आते थे, जहाँ पर मेरी माँ दासी होती थी और वहाँ पर इन योगियों की दासत्व में वो समय बिताती थी, और क्योंकि मैं भी बच्चा होता था उसका, तो मैं भी उनकी सेवा करता था। यहाँ पर नारद मुनि दो विषयों के विषय में बता रहे हैं कि एक तो मैं दासी का पुत्र था, अर्थात अत्यंत क्षुद्र दासी, और दूसरा ये कि अब समाज में ऐसा होता है ना कि दासों का कोई सम्मान नहीं होता, और दूसरा ये कि उनकी शिक्षा भी ठीक तरह से नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि भौतिक बहुत अच्छी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की थी, नहीं, ना उन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया था और ना ही अच्छी एजुकेशन उनको प्राप्त उन्होंने की थी, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहने के कारण अमर मुनि बन गए। क्यों? उन्होंने डायरेक्ट से भगवान की सेवा भी नहीं की, ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन जो भक्त, जो भगवान के भक्त उनके यहाँ पर आते थे, उनकी सेवा करते थे। तो ये होती वास्तव में भक्ति की शक्ति, कि भक्त तो स्वयं तो पार हो जाता है, लेकिन कोई उसके उनके संपर्क में आ जाता है, किसी भक्त के साथ यदि कोई मिल जाता है, किसी तरह से भक्त की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, तो वो उसको भी मुक्त जीव आत्मा बना देते हैं इस संसार में। क्योंकि अब वास्तव में क्या है, हम जितने भी जीव हैं वो भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवन की सार्थकता क्या है, कि किसी प्रकार से दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए हम उत्सुक हों। और ये केवल तभी पॉसिबल है जब हम भक्तों का संग करेंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर से हृदय में इतने अपराध भरे हुए हैं जिनके कारण हमारी बुद्धि कृष्ण में नहीं लग पाती है, हम कृष्ण को प्रेम नहीं कर पाते हैं। और ये अपराध कैसे नष्ट होंगे तो बताते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी का अभियान, संत जना की गोष्ठी कटे कोटि अपराध। हमारे करोड़ों कोटि अपराध का मतलब होता है करोड़ों अपराध। अगर हम जो वाकई में जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ यदि हमारा संपर्क हो जाता है तो फिर वो अपराध नष्ट हो जाते हैं, हृदय की मलिनता समाप्त हो जाती है और हृदय के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। और हम कभी वास्तव में भक्तों, भगवान प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन जो है वो भक्तों का संग है। भगवान तो हृदय में है, भगवान तो सामने है, भगवान तो सदैव है, लेकिन वो भगवान हमें दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अभी हमारी आंखों पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ है ना, क्योंकि अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगा दिया है और वही माया है। और इस इंद्रिय भोग के कारण, इसकी जो इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण हमारे नेत्रों पर माया का पर्दा चढ़ा होता है और हम भगवान को ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं। लेकिन आज नारद जी के उदाहरण से हमें पता चलता है कि भगवान की सेवा से भी अधिक क्या है, भगवान के प्रमाणिक भक्तों की सेवा। भगवान की सेवा वास्तव में प्रारंभ ही तब होती है जब हम किसी भक्त की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से अत्यंत बढ़कर है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी सेवा करो, बोला पहले तो जाओ कि आप परिपाते न प्रणिपात करो, आप प्रणाम करो, सेवा करो। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। वो वास्तव में ज्ञानी है जिन्होंने तत्व को देखा है, वो वास्तव में मुझे जानते हैं और तुम उन्हीं के द्वारा मुझे समझ सकते हो। वो जब वाकई में कोई तत्वदर्शी गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा ना तुम्हें, उसके बाद वो जब तुम्हें शिक्षा देंगे उसी की शिक्षा के द्वारा, उन्हीं जब तुम्हारे नेत्रों से ये माया का पर्दा हटा देंगे ना। वास्तव में भक्तों, ऐसे होता है ना, संसार में भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हम किसी माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें इन चरम चक्षुओं से अधिक एनर्जी, अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से भगवान भी है, भगवान भी हमारी इन चरम चक्षुओं से देखे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जैसे कोई कोई का ना, कोई कोई लोग की दृष्टि, उसका विजन इतना अच्छा नहीं होता है तो ब्लर्ड दिखता है उसको, तो उसी तरह से भगवान जो है वो हमारी इन भौतिक दृष्टि से दिखने, वो परे है उनसे। और गुरु ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिससे होकर उस भगवान का दर्शन किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि केवल गुरु के माध्यम से ही भगवान हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं, हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंतस्य ज्ञान अंजना शलाक्य। मैं अज्ञान के अंधकार में घिरा हुआ था, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके कारण ये अज्ञान का पर्दा हट गया और मुझे भगवान का साक्षात्कार होने लगा। यानी कि अगर संसार में कोई जीव भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहता है तो आज नारद मुनि ये उदाहरण दे रहे हैं कि उसके लिए सबसे पहले भगवान की शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे भगवान स्वयं भी बताते हैं कि जब तक आप भक्त की शरण में नहीं आते तब तक आप भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं उसको जब हम गुरु के गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें वास्तव में संसार में कुछ लोग गुरु बन जाते हैं लेकिन वो बस गुरु ही बने रहते हैं, आगे हटते नहीं है, वो दृष्टि नहीं दिखाते हैं जिससे हम भगवान को पहुंच सकते हैं। बस शिष्य को केवल चेला बनाना सिखाते हैं, भक्त बनना नहीं सिखाते, ये तरीका नहीं है। शिष्य को भक्त बनना, वास्तव में गुरु वो है जो आपको भगवान का भक्त बनाए। जैसे अगर हम ऑप्टिकल पहनते हैं तो उससे ये नहीं है कि वो वस्तु और मेरे दरमियान ये ऑप्टिकल बाधा बनता है, ऐसा थोड़ी होता है, बल्कि क्या होता है, ऑप्टिकल के कारण वो वस्तु मुझे अत्यंत ही सरलता से, सहजता से और बहुत ही क्लियर दिखने लगती है। उसी तरह से गुरु का कार्य क्या है कि वो आपके और भगवान के दरमियान जो भी दिख नहीं रहा है, जो कुछ संशय है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भगवान के साथ संपर्क करने में हमें कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर करे। ऐसा नहीं कि खुद आके खड़ा हो जाए कि हाँ भाई ठीक है तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, इट्स ओके, भगवान ओके, भगवान की भक्ति मैं करूँगा तो मेरी भक्ति करो, रहने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के और आपके दरमियान जो दूरियां हैं उनको खत्म करने के लिए गुरु महाराज होते हैं। वास्तव में सतगुरु का यही कार्य है कि वो आपको आपके भगवान से मिला दे। तो यहाँ पर कुछ लोग का हमारा ऐसा प्रश्न होता है कि भले हम गुरु कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी हमें उनका सानिध्य इतना प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कोई ये गुरु का सानिध्य जो है ना वो बहुत नसीब से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जब भगवान की अत्यंत कृपा होती है ना तब किसी को गुरु प्राप्त होता है। अब लेकिन फिर शास्त्र ये कहता है जब गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है फिर ही आपको भगवान मिलते हैं। मतलब ये कैसे है, ये कैसे होगा, पहले भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे तो पहले तो गुरु की कृपा चाहिए, और गुरु की कृपा पहले प्राप्त करने के लिए पहले भगवान की कृपा चाहिए। वास्तव में तो सबसे बड़ी चीज है आपके हृदय की पवित्रता, आपके हृदय की सिंसियरिटी, आपके हृदय की इच्छा। जीव तटस्थ शक्ति है, वो जो चाहे इच्छा कर सकता है। यदि जीव इच्छा करता है तो भगवान दूर नहीं। भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तुम्हारे हृदय में रह रहा हूँ अर्जुन, मैं हर एक जीव प्राणी के हृदय में रहता हूँ, मैं उनसे दूर थोड़े हूँ। जैसे ही कोई जीव इच्छा करता, भगवान कहते हैं यो याम याम तरम भक्त शक्त है, जिस जिस की भी पूजा करने की, जिस जिस की भी भक्ति करने की इच्छा करता है, श्रद्धा हृदय में उत्पन्न करता है, मैं उसकी श्रद्धा को विकसित करता हूँ और उसे वैसी ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो हृदय में यदि एक जीव को खाली इच्छा करनी है कि मुझे अपने इस जन्म को सार्थक करना है, यहाँ तक कर लो, और उसके बाद पूरा भगवान जो है ना ऐसी योजना बनाते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है। तो नारद मुनि का हृदय पवित्र था वो, और पवित्र हृदय के साथ जब हम किसी भक्त की शरण में जाते हैं ना तो डेफिनेटली भगवान मिलते हैं। तो जब हम पवित्र हृदय से ही चाहेंगे कि हम अपने जन्म को सार्थक करना चाहते हैं, अब आहार निद्रा वही मैथुन की तरह, ये जानवरों की पशुओं की तरह अपने जीवन को समाप्त नहीं करेंगे, तो भगवान कोई ना कोई शुद्ध भक्त से हमारी भेंट करा देंगे और फिर उस तरह से उनके आदेशों का पालन करके। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गुरु के साथ रहना इम्पोर्टेंट है, गुरु के साथ रहना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्तव में गुरु के साथ होने का क्या मतलब है कि हम गुरु के आदेशों का पालन करें। यदि हम गुरु के साथ भी रहते हैं लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे, आगे पीछे चल के चापलूसी कर रहे हैं लेकिन नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपना जप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं अच्छी, तो फिर ऐसे साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि हम गुरु महाराज से, देखो दो तरह की सेवा होती है, अब यहाँ पर नारद मुनि जो है वप्पू सेवा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वप्पू सेवा इम्पोर्टेंट नहीं है। वप्पू सेवा का मतलब होता है उनके शरीर की सेवा, जैसे वो भक्तों की सेवा कर रहे थे, उन कारण भोजन उनको परोसते थे और उनके पत्तल उठाते थे। हमें भले ऐसी गुरु महाराज की सेवा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वाणी सेवा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन वापो सेवा। अगर हम अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हैं और उनकी कही हुई बातों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनके वपु सेवा से अत्यधिक गुरु महाराज उनसे ज्यादा खुश नहीं होते हैं जो उनके चरणों की मालिश करते हैं या फिर उनको उनके साथ रहते हैं, उनकी वपु की सेवा करते हैं। उनसे ज्यादा खुश होते हैं जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो गुरु के आदेश, आज हम कलयुग के जीव हैं और हमारे लिए क्या आदेश है कि हम चार नियम का पालन करें, अपने 16 माला जप करें, प्रभात साधना करें, गीता और भागवतम को श्रवण करें, एकादशी का उपवास करें और जो श्रवण कर रहे हैं वो दूसरों को बताएं, भागवत इसे प्रचार करें। ये केवल इतना ही सरल हमें इतना आदेश दिया हमारे गुरु महाराज ने कि हम नियमों का पालन करें, ऐसा अपना आचरण बनाएं कि कोई देखकर ये कहे कि हाँ देखो ये हरे कृष्ण वाले कृष्ण के भक्त कितना सुंदर रीति से कर रहे हैं। क्यों किसी को हम मौका देते हैं कि हमारे बारे में ऐसी बात की जाए जिससे हमारे गुरु और हमारे कृष्ण की खिलाफ बात हो? ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे लोगों के अंदर और भी घृणा हो। ऐसा वातावरण ऐसा बनाएं, ऐसा अपना एटीट्यूड ऐसा बनाएं कि लोगों को अच्छा लगे। प्रचार केवल किताबों से पढ़कर नहीं किया जाता, प्रचार आचरण से भी किया जाता है। हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए कि कोई ऐसे ना कहे देखकर कि देखो कैसे कैसे भक्त हैं, ऐसा करते हैं कोई भक्त, हमारे अंदर ऐसे हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जिससे हम दूसरों को भी ऐसे अपनी ओर आकर्षित करें। कृष्ण भक्ति की महिमा के विषय में बताएं, कृष्ण भक्ति के अंदर कितना आनंद है उसके विषय में बताएं और कृष्ण भक्ति ही आपके जीवन का लक्ष्य है उसके विषय में बताएं। तो वास्तव में भक्तों, ये एक भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने आचरण से प्रचार करता है। और जितना जितना हम शुद्ध होंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा जीवन पवित्र होगा, तो ये सब पर प्रभाव डालता है, वातावरण पे प्रभाव डालता है और इससे बहुत अच्छा प्रचार होता है। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम स्वयं रूल्स को फॉलो करें, स्वयं अपना जप नियमित रूप से करें और जो गुरु महाराज के आदेश हैं उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तो फिर इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जन सामान्य पर। और अंत में श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि सक्षम गुरु वह कहलाता है, वह कला उसको वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। जो कुछ भी है संसार में उसका उपयोग भगवान के यशोगान के लिए, भगवान की स्तुति के लिए किया जा सकता है। अतः उसके मार्गदर्शन में भगवान के दास की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। ये संसार ही फिर अगर ऐसे शुद्ध भक्तों का साथ प्राप्त हो जाता है तो ये संसार ही वैकुंठ धाम बन जाता है। वास्तव में वैकुंठ में क्या है? भगवान है। और यदि हम यहाँ पर किसी शुद्ध भक्त के माध्यम का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो संसार में भी हर जगह में भगवान ही दिखेगा। हर वस्तु में जो भगवान वैकुंठ में रहते हैं उसकी अनुभूति एक एक कण में होने लगती है। तो ये संसार जो है पूरा वैकुंठ धाम में परिणत हो जाता है जब हमें शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। हमारे शिक्षा गुरु हमेशा कहते थे कि यदि भगवान से प्रार्थना करनी हो ना तो ये करना कि भगवान हमें सदैव शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो ताकि हम आज की भक्ति में उन्नति कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और कृष्ण की अच्छी सेवा करके आप सबको अच्छी तरीके से श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्लोक बता सकूं। हरे कृष्णा।